نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آج ہم سورۃ الروم آیت نمبر 20 سے 38 تک کریں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھتے ہیں تفسیر اس لیسن کی. ہم نے سورۃ الروم سٹارٹ کی تو ہم نے پڑھا کہ کس طرح اللہ تعالی نے ایک غیب کی خبر دی مسلمانوں کو کہ جو روم اور فارس میں جنگ ہوئی ہے, اور آج تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فارس جو ہے وہ فتح پا گئے ہیں, لیکن ایک وقت آئے گا کہ رومی فتح پا جائیں گے, اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی. اس کے بعد پھر زندگی جو دنیا کی ہے اس کے بارے میں بتایا گیا کہ لوگ کیسے دنیا کی زندگی کو تو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں اور آخرت کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں. اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کا, حساب کتاب کا, ان چیزوں کا بیان آیا, اور اپنے آپ کے اوپر بھی غور کرنے کی بات آئی. اور ہم نے لاسٹ ٹائم جیسے پڑھا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی, چاہے وہ آسمانوں میں ہوں چاہے زمین میں ہوں, سارے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں. آسمانوں میں فرشتے بیان کرتے ہیں, اور واللہ عالم اللہ کو بہتر معلوم ہے اس کی اور کون کون سی مخلوق ہے, ہمیں صرف فرشتوں کا ہی پتہ ہے, لیکن اللہ کے لشکروں کو وہ خود ہی جانتا ہے اور کیا کیا ہمارے پاس بہت ہی محدود علم ہے. تو ہم نے یہاں پہ یہ سیکھا کہ نماز تو ہے ہی, انشاءاللہ آپ کو جیسے آپ نے دیکھا نماز کے اوقات آپ کو پتہ چلے الحمدللہ. تو صرف نماز ہی نہیں بلکہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے آیت 17 اور 18 سے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کی توجہ اللہ کی طرف رہے, یعنی شام کو بھی صبح کو بھی اور جب عشاء تیسرا پہر ہو تب بھی, جب ظہر کرتے ہو تب بھی, یعنی پورے دن میں ایک بتا دیا گیا کہ تمہاری روٹین کیا ہونی چاہیے کہ بار بار اللہ ہی کی طرف متوجہ رہو, اللہ ہی کی طرف پلٹتے رہو, کہیں اس کی تسبیح ہو رہی ہے کہیں اس کی حمد بیان ہو رہی ہے, کیونکہ وہ واقعی حمد کے لائق ہے, سبھی اس کی حمد کر رہے ہیں. تو تم بھی کرو, ایک انسان کو اس چیز کی طرف ترغیب دی گئی کہ انسان بھی پوری کائنات کے ساتھ شامل ہو جائے اس تسبیح میں. تو آپ دیکھیں دن کے مختلف اوقات اور رات کو بھی بیان کر دیا گیا اس آیت میں. ہم سب کے لیے صرف نماز پڑھ کے اٹھ جانا ہی نہیں بلکہ سارے دن میں ہی اللہ کا ذکر کرتے رہنا, یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ٹوٹلی میری طرف تمہاری توجہ رہے. وہ کبھی بھی اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ کافی ہو گیا. جتنے اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں اس کے مطابق تو ہم سجدے میں بھی پڑے رہے نا ساری عمر, تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے. تو یہ کبھی کافی نہیں ہے یا کبھی زیادہ نہیں ہے یا کبھی ہر وقت ہی لگے رہے ہو. کوئی کہتا ہے ہر وقت ہی آپ ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں, تو کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان ہر وقت ہی ایک بات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے, انسان تو غافل ہو جاتا ہے. اور جہاں ذرا کرنے لگو تو لوگ آگے سے یہ اعتراض کرنے لگتے, حالانکہ کبھی بھی یہ زیادہ نہیں ہو سکتا, ہمیشہ کم ہی رہتا ہے ہماری طرف سے. جتنا ہم کرتے ہیں اس سے زیادہ بڑھانا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے زبردست اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھی, کیسے وہ دیکھو مردہ سے زندہ کو, زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے سبحان اللہ, اور کیسے تم نکالے جاؤ گے. اس میں اگین ہمیں واپسی کی یاد دلائی گئی کہ کیسے تم کھڑے کیے جاؤ گے. تو اگر انسان کچھ دیر کے لیے سوچے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ چند سیکنڈ کے لیے یہ ذہن میں لے کر آئیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گی, سوچیں اپنے ذہن میں کیسی دنیا بدلی ہوگی, پہچان ختم ہو چکی ہوگی, या दूसरे की, जानने पहचानने वाले करीबी रिश्ते भी तवज्जो करने को तैयार नहीं होंगे, सब अलग अलग हो जाएंगे। हमने पढ़ा ना पहले, जुदा जुदा हो जाएंगे, अकेले अकेले। दुनिया में आप देखते हैं, एयरपोर्ट पे आप किसी को छोड़ने जाते हैं ना, जितना भी आगे चले जाएं, कहीं बहुत आगे तक जाने देते हैं, कहीं बाहर ही गेट पे रोक लेते हैं, मगर किसी एयरपोर्ट पे बहुत भी इजाजत हो, कितना भी आप आगे चले जाएं, एक हद के बाद उस इंसान को आगे खुद ही जाना पड़ता है, इसके बाद कोई नहीं आगे जा सकता उसके साथ, आपको खुदाफिस कहना ही पड़ता है। इसी तरह हम इस दुनिया से चले जाएंगे ना, बस कब्र तक तो लोग जा सकते हैं, कितना भी कोई कर ले तो वहां तक ही जा सकता है, उससे आगे नहीं कोई जा सकता, उसके बाद अकेले अकेले ही जाना, और फिर उस कब्र से भी अकेले ही उठना, और अल्लाह के आगे अकेले ही खड़े होना। तो इसमें देखना है कि क्या लेकर जा रहे हैं, आखिरत के लिए कितना बना लिया। जो इस दुनिया की जिंदगी की हकीकत को समझ लेता है ना, उसके यहाँ रहने के अंदाज बदल जाते हैं। सहाबा कराम में और हम में फर्क ही ये है कि उन्होंने जिंदगी की हकीकत को जान लिया था, और आज तक हम नहीं समझ सके किसकी हकीकत क्या है। आज तक की जिंदगी में कैलकुलेट करना है कि कितना हिस्सा हम यहां के लिए लगा रहे हैं और कितना अपनी आखिरत के लिए लगा रहे हैं, और जब हिसाब किताब होगा ना, तो वो हिस्सा जो दुनिया के लिए सिर्फ लगा दिया वो तो सब खत्म होगा, असल उसी के ऊपर बात होगी जो आखिरत के लिए लगाया, वही काम आएगा। तो ये यकीन जो है ना, ये दिल में हमें बिठाना है कि तुम निकाले जाओगे, तुम्हारी वापसी है, बार बार इसको दोहराते रहें। जितना ज्यादा आप अपने साथ इसकी रिहर्सल करते रहेंगे, इस चीज को रिवाइज करते रहेंगे जहन में ना, उतना ही ज्यादा ये जहन में बैठता जाएगा, और जितना इस चीज से डरते रहेंगे, इसको नहीं याद रखेंगे, इसकी बात करने से घबराएंगे, उतनी गफलतें तारी होती जाएंगी। कोई भी मौका हो, आप ओवर एक्साइटेड जब भी हो रहे हो ना, ये याद कर लिया कर कि एक दिन मुझे जाना है और एक दिन अल्लाह के आगे खड़े होना है, एक दिन मुझे अपनी कब्र में जाना और एक दिन उससे खड़े होना है। तो इसको एक रूटीन बनाने की जरूरत है कि हम रोजाना अपने आप को ही कहना, किसी को कहने की नहीं जरूरत, अपने आप को कहना, आप देखेंगे कि फर्क पड़ेगा इससे। क्योंकि हम देखते हैं कि हम पढ़ते तो रहते हैं, उसके बाद फिर भूल जाते हैं, तो रोज हर वक्त तो हमें कोई रिमाइंड नहीं कराने आएगा, कोई हर वक्त तो हमारे साथ नहीं रह सकता, हम अपने आप को खुद रिमाइंड कराएंगे। आज की जो हम आयात पढ़ने वाले हैं, अगर आपको याद हो, ये सूरत जब शुरू हुई थी तो मैंने आपसे कहा था कि इस सूरत को अगर कोई खुले जहन के साथ पढ़ेगा ना, तो कोई एथिस्ट नहीं रह सकता, कोई काफिर अपने कुफर पे कायम नहीं रह सकता, कोई अपने शिर्क को जारी नहीं रख सकेगा, अगर इस सूरत को खुले जहन, सिर्फ ये सूरत, पूरे कुरान को छोड़ दें, सिर्फ ये सूरत हर किस्म के तासुबात बायसेस जहन से निकाल के और बिल्कुल जहन को साफ करके, जो भी पहले से भरा हुआ जहन में वो एक तरफ रख के सिर्फ इस सूरत को पढ़ लिया जाए, आप देखेंगे तौहीद समझ आ जाती है। और सबसे बेवकूफ तो वो है जो कहता है कि खुदा ही नहीं है, वो सबसे ही बेवकूफ है, इसलिए कि कायनात में कितनी निशानियां जो अल्लाह ताला की होने पर दलील पेश करती हैं, आंखें तो खोल के देखो, और यही निशानियां अल्लाह ताला ने हमें दिखाई हैं आज, ये आंखें खोल के जरा देखो। पहली निशानी जो अल्लाह ताला ने हमें दिखाई है वो क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमिन आयातिही, और उसकी निशानियों में से है क्या, अन खलकुकुम मिन तुराबिन, कि उसने पैदा किया तुमको मट्टी से। सबसे पहली निशानी तो तुम्हारा अपना वजूद है। तुम सिर्फ अपने वजूद पे गौर कर लो, अपने आप पे गौर कर लो, अपने आप को तो देखो ना। जब तुम अपने आप को देखोगे तो उससे भी तुम अल्लाह को पहचानोगे कि कौन है जिसने मुझे ये वजूद दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया किस चीज से तुम्हें पैदा फरमाया, मट्टी से। सुभान अल्लाह, मट्टी। आप देखें, मट्टी को हाथ में लेकर देखिएगा, क्या चीज है ये, इतनी बेजान, ना इसमें कोई जज्बात है ना कोई एहसासात है, बिल्कुल डेड। चार चीजें हैं ना जिनका ज्यादा बेसिक, जिनका ज्यादा जिक्र आता है, मट्टी, आग, हवा, पानी। ठीक है, आग, हवा और पानी में तो थोड़ी फिर भी कोई हरकत होती है, मट्टी तो बिल्कुल ही बेजान है, इन सबसे ही समझ ले नीचे। इस मट्टी से अल्लाह ताला ने ऐसी खूबसूरत शक्लें बना दी जो चलती हैं, फिरती हैं, बोलती हैं, देखती हैं, सुनती हैं, सोचती हैं। ये मट्टी के पुतले हैं जिनमें अल्लाह ने जान डाल दी, सुभान अल्लाह। ये मट्टी को हाथ में लेके ना तो सोचिएगा कि ये हूं मैं। ये मट्टी जो किसी के कदमों तले आने वाली होती है, ये मट्टी जो कई दीवारों में चुन दी जाती है, इसी मट्टी से अल्लाह ने मुझे ये शक्ल दे दी, ऐसा मुझे बना दिया। कोई सोच सकता है मट्टी और अपना फिर वजूद देखें, कोई सोच सकता है इस मट्टी से मैं बन सकती हूं? जिस जात को आप देख नहीं सकते ना, उसको पहचाने इन निशानियों के जरिए। निशानी किस चीज के लिए होती है? मैं आपको कोई चीज दूं और आपको कोई, ये मेरी निशानी है, आप कहीं मसलन जा रही हैं तो मैं आपको कोई, ये देखो ये रिंग मेरी ले ले, ये मेरी निशानी है। वो क्यों दी जाती है निशानी? कि जब जब तुम इस रिंग को देखोगी मुझे, मैं तुम्हें याद आऊंगी, ऐसा ही होता है ना। इसी तरह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे रब ने इस जमीन पे ये सारी निशानियां रख दी अपनी, जब जब तुम उनको देखोगे तो तुम्हें मैं याद आ जाऊंगा। लेकिन उफ, ऐसे इंसान के ऊपर तुफ है कि जो फिर भी इनको देखे और कहे कि कोई खुदा ही नहीं है, कि तुम्हारी अक्लों को क्या हो गया, ये वजूद। जी आज साइंस कहती है कि इंसान किससे बना, कार्बन से, आयरन है थोड़ा, वो क्या क्या अर्थ कंपोनेंट, कैल्शियम है, ये वो चीजें बताते हैं। अगर इन चीजों की आप मिकदार को ले लें कि कितना कितना इंसान में कौन कौन सी चीज है, तो ये चीजें आपको बाजार से चंद डॉलरों में मिल जाएंगी। लेकिन आप इससे लेकर, ये चीजें लेकर जो बाजार में मिलती हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीजें नहीं है, इनसे जीता जागता इंसान नहीं बना सकते, एक डेड इंसान भी नहीं बना सकते। जीता जागता तो छोड़े, सिर्फ पुतला थोड़ी बनाना, इंसान के अंदर देखें क्या क्या चल रहा है। ऐसा ऐसा वजूद इंसान खुद पैदा कर ही नहीं सकता, तो तेरा कोई पैदा तो करने वाला होगा ना, ये तो मान जा कि तेरा कोई पैदा करने वाला है। वो कौन है? वही अल्लाह है जिसका तू इनकार करता है। आज ये फितना, यानी हैरत होती है, लोग पढ़ लिख के इतनी डिग्रियां ले रहे हैं और जितने बड़े माशाल्लाह बन रहे हैं यूनिवर्सिटियों में जाके, पीएचडीज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, पता नहीं कहां कहां पे, और उसके बाद देखो अकल कैसी मारी जाती है कि उसके बाद कहते हैं खुदा का कोई वजूद ही नहीं। अरे नादानो, तुम पढ़ लिख के तुमने ये सीखा कि अल्लाह का कोई वजूद नहीं है, कोई खुदा ही नहीं है। तुम सोच तो लेते, अपने आप को तो देख लेते ये कहने से पहले। इंसान एक वक्त था, हल अता अल इंसान हैनु मिन तहरी लम यकुन शैअ मज़कूरा, एक इंसान के ऊपर वो भी लामतना ही जमाना गुजरा, तुम कोई चीज भी नहीं थे, फिर खुद ही पैदा क्यों नहीं हो गए? अगर खुद ही पैदा हो सकते थे तो खुद पैदा हो जाते ना, कोई तुम्हें जानता नहीं था, कोई कोई तुम्हारी पहचान नहीं थी। और देखो कैसे उस रब ने मट्टी से तुम्हें ये वजूद दे दिया, कि कैसे आज कितनी कितनी प्यारी शक्लें हैं, कितनी कितनी प्यारी यानी सूरतें हैं, सलाहियतें हैं, कुव्वतें हैं, अकलें हैं, आधे तुम माँ के पेट में थे, आधे बाप के पेट में थे। क्या थे तुम और क्या बना दिया गया तुम्हें? और जब बन के परवान चढ़ गए तो उसके बाद कहते हो कोई खुदा ही नहीं है, कोई बनाने वाला ही नहीं है। अल्लाहु अकबर। और आज कहते हो मैंने ये किया, मैंने वो किया। याद रखें, बच्चों को भी ना बचपन से, बच्चों में एक फितरत होती है, वो हर चीज को पूछते हैं। उन एक अल्लाह ताला ने एक रखी है अंदर ना, एक इंसान के अंदर खोज नहीं जैसे होती। आप देखते हैं वो हर एक चीज में घुसते चले जाते हैं, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या, हर चीज का क्वेश्चन करते हैं बड़ों से। जब उनको आप सही गाइड नहीं करते ना, वो पूछेंगे ये किसने बनाया, वो किसने किया, ये किसने दिया। अगर आप सही नहीं गाइड करेंगे तो शैतान उनको जवाब सुझा देता है फिर कि मैंने किया, ये मैं हूं, ये मैं लाई हूं, ये मैंने बनाया, ये मैं आने लगती है। उनको ये सिखाना है अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने दिया, मैं नहीं होनी चाहिए। इंसान देखें फिर किस तरह परवान चढ़ता है, मैं के साथ खाता है किसी और का दिया हुआ, पहनता है किसी और का दिया हुआ, सांस लेता है किसी और के हुक्म से, उसकी कुव्वतें ताकतें किसी और के हुक्म से चलती हैं। उसको तो ये वजूद मिल गया, उसको तो सर सदी से नहीं उठाना चाहिए था, और वो वजूद देने वाले को ही भूल गया और इस चीज को समझा ही नहीं कि मैं कभी तो सोचूं कौन है जिसने मुझे पैदा किया मां के पेट में, मेरी जरूरियात को पूरा किया, मुझे दुनिया में लेकर आया, मेरे आजा सही काम करते थे, मैं देखता सुनता बोलता, किसने मुझे पाला, खुद ब खुद हो गया क्या सब कुछ? मैं कीड़ा भी तो हो सकती थी, एक रींगने वाला कीड़ा, एक चींटी भी तो हो सकती थी जिसको लोग मसल देते पैरों के नीचे। मैंने उसका ही एहसान ना माना जिसने मुझे अशरफुल मखलूकात बना दिया। तो कितनी ये दुख की बात है कि इंसान अपने खालिक को ही ना पहचाने, जिसने इस वजूद का नक्शा बनाया, इसको इसको इसकी नोक पलक संवारी, कैसे कंप्लीट करके दुनिया में भेजा, इसको रंग रूप दिया, इसके लिए खानदान चूज किया। क्या ऐसा इंसान वफादार कहला सकता है या जो अपने मालिक से ही बेवफाई करे? इतनी बात तो जानवरों तक को समझ आती है, उसको भी, जानवर को भी कुछ अरसा रोटी डालते रहे ना आप, तो उनको भी समझ आ जाती है। वो भी कुत्ता भी हो तो वो भी दुम हिलाता फिरता है आगे पीछे। तो हमारा तो पूरा का पूरा वजूद अल्लाह ताला के एहसानात तले दबा हुआ है। और दुख ये है कि यानी झुकना तो दूर की बात है, सिरे से ही इनकार कर दिया कि कोई है ही नहीं। अपने आप को तो देख लेती है कहने से पहले, अपनी जात को पहचान लो ना तो तुम्हें अल्लाह की पहचान हो जाएगी। सिर्फ इंसान अपने आप को देख ले तो उसको समझ आ जाएगा कि मेरा बनाने वाला कैसा है। और बताएं, और कौन बना सकता है मिट्टी से ऐसा वजूद? अगर बना सकते होते तो आज लोगों ने खुद ही बना बना के, मिट्टी तो बहुत अवेलेबल है जमीन पे, कोई मुश्किल तो नहीं है, मिट्टी लाना कहीं से कोई मुश्किल नहीं, ट्रक के ट्रक भर के ले आओ तो बनाते रहते लोग, जिसका जो जी चाहता बना लेता। यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक जो मिट्टी से हुई, लेकिन उसके बाद भी जितने इंसान हैं नुतफे से पैदा हुए, और वो नुतफा भी कहाँ से आता है, वो मिट्टी के से खुराक आती जिसे नुतफा बनता है। तो ये अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि देखो ये हो तुम, तुराब से पैदा हुए, इस बेवकत हकीर सी मिट्टी ने अल्लाह ने कितना कीमती इंसान पैदा कर दिया, ये सिर्फ उसी की शान हो सकती है। कभी कहीं हंसता है, कहीं बोलता है, कहीं रोने लगता है, कितना कुछ है इसके अंदर, कैसी शेप इसको दे दी, घाड़ दिया जैसे किसी ने। सुभान अल्लाह। सुम्मा इदा अंतुम बशरुन तंतशिरून, फिर तुम तब इंसानों फैलते जा रहे हो। कभी आपने सोचा कि सारे इंसान जितने भी आप देखते हैं एक आदमी और एक औरत की औलाद है, आदम और हव्वा की। कहां वो एक कपल था और कहां देखें आज दुनिया की आबादी कितने फैल गए। अल्लाह ने एक ये प्रोसेस भी रख दिया तुम्हारे फैलने का। वह मिन आयाती ही, और उसकी निशानियों में से। अब ऐसे लग रहा है ना, सुभान अल्लाह, जैसे हम बच्चों को जैसे कभी दिखाते हैं ना, बिठा के एक कोई एल्बम दिखाते हैं, अच्छा ये देखो, ये देखो, ये पिक्चर देखो, ये भी ये है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, फिर सफ़ा पलटते हैं, फिर कहते हैं ये देखो, ये अल्लाह ताला भी आपको कायनात की एल्बम से चीज़ें दिखा रहा है। आप देखते तो होंगे इन चीज़ों को, लेकिन कभी शायद इस नज़र से नहीं देखा आपने, इसलिए आपको बताया जा रहा है मिन आयाती ही, उसकी निशानियों में से। आप फिर से सोचे, निशानी किस लिए होती है? कि उसकी याद आ जाए जिसने वो निशानी दी, जिसने वो निशानी बनाई। उसकी निशानियों में से क्या है? अन खलकलकुम मिन अनफुसिकुम, कि उसने पैदा किया तुम्हें तुम्हारे लिए तुम्हारे ही नफ्सों से, अजवाजन जोड़े, तुम्हारे ही यानी इंसानों के अंदर से ही तुम्हारे जोड़े बनाए। यानी एक औरत होती है, उसी के अंदर से लड़का भी पैदा होता है, लड़की भी पैदा होती है ना, जगह वो ही है, खुराक भी वही है, लेकिन देखा है अल्लाह ताला कैसे बिल्कुल ऑपोजिट सेक्स पैदा कर देता है। एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों के जज्बात अलग, दोनों के कैफियात अलग, दोनों की जिस्मानी साख्त अलग, एक ही जगह से पैदा हो रहे हैं, और तुम्हारा जोड़ा बनाया, तुम ही में से इंसान के अंदर से ही उसका जोड़ा बनाया। यानी ऐसा नहीं है कि इंसान का जोड़ा, मिसाल के तौर पे अब आदमी को अगर शादी करनी पड़ेगी किसी जिन औरत से, या औरत को जिन आदमी हो जिसके साथ शादी करनी पड़े, वो उसका जोड़ा बना दिया जाता, तो कैसे बॉन्डिंग होती? आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया तो उनके लिए हज़रत हव्वा को बनाया गया, क्योंकि इंसान कंपनी चाहता है। आप देखते हैं ना, कभी भी हमने कहीं जाना हो, कहीं सैर के लिए या कुछ है, तो दिल करता है कोई साथ हो, कोई साथ हो, कोई साथी हो जिसके साथ इंजॉय करते हैं। अकेले कभी भी इंसान नहीं इंजॉय करता, लोनली हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने उसकी कंपनी के लिए, उसके साथ के लिए उसी के अंदर से जोड़ा पैदा किया। किस लिए पैदा किया ये जोड़ा? क्या मकसद है जोड़ा पैदा करने का? मर्द और औरत जब एक कपल बनते हैं तो उस कपल होने का, या एक जो शादी का रिश्ता है, शौहर बीवी का रिश्ता है, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है कि वो किस लिए होता है, उसका मकसद क्या है। बाज़ लोग शायद आप में से ये कहें कि उसका मकसद ये है कि नस्ल इंसानी बढ़े आगे, ठीक है, वो एक मकसद हो सकता है, लेकिन कुरान ने ये क्या मकसद बताया, ये क्यों मियां बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, क्यों तुम्हारे लिए जोड़े बनाए, क्यों ये कपल्स पैदा किए कि तुम्हें इंसान में से ये कपल बना दिया, दे दिया तुम्हारा जोड़ा, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सकून पाओ उसकी तरफ से, सकून लेने के लिए। क्या पता चला कि मियां बीवी का रिश्ता किस लिए होता है? एक से दूसरा सकून पाए, यानी एक दूसरे से सकून पाए। वैसे तो यहां पे हा की जमीर है, मतलब मर्द जो है वो औरत से सकून पाए, वैसे तो मर्द भी सकून का बायस बनेगा औरत के लिए, मगर जो एक फैमिली या एक घराने में सकून देने वाली चीज है ना, वो औरत है। औरत का बहुत बड़ा रोल होता है सकून देने में आदमी को। आप देखें कि एक घर की लाइफ, एक घर की जो जिंदगी है, उसके अंदर औरत वो मेन रोल अदा करती है, अगर वो चाहे तो घर पुरसकून रह सकता है, और अगर वो चाहे तो घर में कियोस झगड़ा और तूफाने बदतमीजी और एक बेचैनी बेसकूनी हो सकती कि जिंदगी अजीरन बन जाए, ऐसा भी हो सकता है, लड़ाई झगड़े ये सब होते रहे। तो ये बेसिकली औरत की एक जिम्मेदारी है कि वो सुकून देने वाली बने, मर्द उससे सुकून पाए। और जैसे मैंने आपको कहा, जिम्मेदारी दोनों की है, ऐसा नहीं कि एक नहीं बस सुकून देना, दूसरे ने तो बेसुकूनी का बायसी बनता है, नहीं। लेकिन असल जो अव्वलीन मकसद औरत का रोल जो इसके अंदर है ना, वो सुकून पहुंचाने वाली का। कैसे वो सुकून देती है? देखें, वैसे तो आदमी की जो सेक्सुअल डिमांड है उसको पूरा करके उसको इस तरह से भी सुकून देती है, फिर उसके अलावा भी घर के माहौल को झगड़ों से, फसाद से, बहसों से आजाद करके, पाक रख के भी सुकून देती है आदमी, कि आदमी घर आए तो उसको एक पुरसकून एनवायरनमेंट मिले। किसी बात के ऊपर कोई तकलीफ पहुंचे तो उस पर सब्र करके भी उसको सुकून देती है कि ना, आदमी घर आता है तो वो ये मूड ऑफ करके भी बैठी हो जा सकती है, आर्ग्यूमेंट्स करके भी घर के माहौल को खराब कर सकती है, और इसको अवॉइड करके सुकून भी दे सकती है। इसी तरह उसकी जरूरियात बाकी जो हैं, मसलन खाना पीना है, उसके कपड़े हैं, उसकी और घर की सफाई सुथराई है, उसके बच्चों की तरबियत है, उसकी ये सब चीजें करके वो आदमी को सुकून देती है। बहुत तरीकों से औरत सुकून की एक सुकून देने वाली चीज है, समझ लो कितनी प्यारी चीज है औरत। जिसके सुकून किसको नहीं पसंद आता, हर एक इंसान आज दुनिया में इस तलाश में कि उसको सुकून मिले। लेकिन अगर सुकून ही नहीं मिल रहा ना किसी को घर में, तो इस रिश्ते का मकसद ही पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि अव्वलीन मकसद ही है। देखिए यहां पे क्या बयान किया गया, लीता सुकूनु इलैहा। अगर एक घर में हर तरह की लग्जरीज है लेकिन वहां पे किसी को सुकून नहीं है, या औरत को नहीं सुकून है, आदमी को नहीं सुकून है, हर वक्त वहां पे एक लड़ाई का, जंग का मैदान बना हुआ है, तो वो तो फिर मकसद ही पूरा नहीं हुआ। मकसद ये थोड़ी है कि बच्चे पैदा कर दिए, मैं बच्चे पैदा करती हूँ और मैं तो इस तरह से बस मैं कामयाब हो गई, नहीं। सुकून ही नहीं अगर आपने दिया तो फिर कोई कामयाबी नहीं। बेसकून देने के लिए और अपने आप को निखार के, अपने आप को संवार के, अपने बाल बना के, अपने आप को अच्छा रख के भी आदमी की नजरों को सुकून देती है, लज्जत देती है। तो ये सब सुकून की देने के रास्ते हैं। ये चीज औरत को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि उसका काम क्या है इस जो रिश्ते में, उसका रोल क्या है, और फिर उस रोल को अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आज के वक्त में अक्सर तो औरतों को इस बात की समझ ही नहीं है। इस आयत को आप सबसे ज्यादा शादी के कार्ड्स में लिखा हुआ देखेंगे, लेकिन कितने जोड़े हैं जिनको शादी करते हुए इस आयत की समझ हो कि ये आयत कहती क्या है, इसको पता ही नहीं कि उसका रोल क्या है। इसी वजह से फिर कोई इसको इसके लिए एफर्ट भी नहीं करता, क्योंकि एफर्ट करनी पड़ती है ना सुकून देने के लिए। और अगर किसी को पता चल भी जाए तो बाज दफा काम इतना खराब हो चुका था कि वो कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है ये हेडेक लेने की। उसको कोई औरत को इंटरेस्ट ही नहीं होता अपनी जिम्मेदारी को निभाने में। नतीजा क्या होता है कि घर घर बेसकूनी है, मसले हैं, लड़ाई झगड़े हैं। और इसमें ये नहीं सिर्फ हम कह सकते कि सिर्फ औरत का ये एक उसकी वजह से होता है, बाज मर्द भी इंतहाई नाशुक्रे होते, हर वक्त शिकायत। तो ये भी एक चीज होती है, मगर औरतों में भी ये चाह होनी चाहिए, ये उनको उनका दिल चाहना चाहिए कि मैं सुकून देने वाली बनूं। آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت میں جانے والی عورتوں کی صفات نہ بتاؤں، محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، اور جب اس کے خاوند اس سے ناراض ہو جائے، غصہ آ جائے، تو کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں، میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں، یعنی میں تو سوؤں گی نہیں، یہ نہیں کہ جائیں آپ جا کے ادھر سوئیں، میں تکیہ لے کر جا رہی ہوں، میں ادھر سو رہی ہوں، آپ مجھ سے بات مت کرنا، اور کئی کئی دن گزر جائیں اور کوئی بات چیت نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسی عورت ہوتی ہے جو جنت میں جانے والی عورتوں کی صفات ہے نا، یہ ایسی عورت ہے جو جنت میں جائے گی، جس کے اندر ایسا تکبر نہیں ہے، عاجز مزاج ہے۔ آج دیکھا گیا ہے بعض عورتیں اپنے شوہروں کو ایسے ان کے ساتھ رویہ رکھتی ہیں، یا ایسے کنٹرول کرتی ہیں، یا ایسے ان کے اوپر حکم چلاتی ہیں، یا ایسے ان کے اوپر اعتراضات کرتی ہیں جیسے کہ وہ اپنی اولاد پہ کرتی ہیں، جیسے اپنے بچوں پہ کرتی ہیں، تو شوہر کو بھی انہوں نے ایسے ہی سمجھا ہوتا ہے، اور یہ سوچتی ہیں کہ بس وہ ہر وقت یس میڈم کہتا رہے۔ یہ جو جنت میں جانے والی عورتوں کی صفات ہیں، ان میں تو کوئی ایسی صفت نہیں ملتی، یہ عورت کو ایسا ڈومینیٹنگ ہونا چاہیے، وہ ایسی ڈکٹیٹر بن کے رہے گھر میں۔ اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ عورت کو پھر مزاج شناس ہونا چاہیے، میرے شوہر کا مزاج کیا ہے، محبت کرنے والی ہونا چاہیے۔ تو کیا آج کی عورت اپنے اس رول کو سمجھتی ہے، یا پھر اس کو ہر ذمہ داری بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے، یہ بھی میں کروں، میں یہ بھی کروں۔ بھائی دیکھیں، جہاں پہ محبت ہوگی نا، وہاں پہ ذمہ داریاں بھی آپ خوشی سے ادا کریں گے، پھر وہ ذمہ داری بوجھ نہیں لگتی۔ اور جہاں پہ محبت نہ ہو، یہ تو محبت کرنے والیاں ہیں، جہاں پہ محبت نہ ہو وہاں پہ ہائے ہائے نکلے گی ہر ایک چیز، وہاں پہ خدمت کرنے کو جی نہیں چاہے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالی نے جو صفت بیان فرمائی ہے قرآن میں نیک عورت کی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کیا کیا کرتی ہیں نیک عورتیں، کیسی ہوتی ہیں قانتات، قانتا کیسی ہوتی ہے، یعنی اطاعت کرنے والی، خوشی کے ساتھ بات مان جانے والی۔ آج ہم کہیں گے ہم نیچے رکھ کے رہیں ان کے، ہم ان کی بات مان لیں، یہ میری بات مانیں۔ اور حافظات، حفاظت کرنے والی، حفاظت کرنے میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے، مرد اپنا گھر اس عورت کے حوالے کر کے جاتا ہے، سارا دن تو وہ غائب رہتا ہے، اور اس کے گھر کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اس میں اس کی عزت کی حفاظت، اس کے رازوں کی حفاظت۔ اور ہمارے ہاں ہوتا کیا کہ شروع دن سے سب سے پہلے ہر ایک کو یہ ٹول لگ جاتی کہ ہو کیا رہا ہے ان کی شادی میں، بس سب صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، اس نے تمہیں کیا کہا، اس نے کھوج کھوج کے پوچھتے ہیں، کرید کرید کے پوچھتے ہیں، کہیں پتہ چل جائے کہ ہم کہاں کوئی بات نکالیں۔ اچھا اس نے تجھے ایسے دیکھا تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا، تمہیں یہ کہنا چاہیے۔ شیطان کا پہلا وار ہو گیا کہ راز ہی نہیں رکھا گیا، اگلے دن ہی شوہر کی چگلیاں شروع ہو گئی۔ تو یہ اس کے رازوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہے، یہ بھی، یہ اس چیز کو پہچاننا چاہیے کہ جو آج اس کی عزت ہے وہی میری عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک دوسرے کا لباس فرمایا ہے اس رشتے کو، ایک دوسرے کا لباس، لباس میں تین چیزیں سب سے زیادہ اہمیت ہے، تین چیزوں، ستر یعنی ڈھانپتا ہے، حفاظت کرتا ہے سردی گرمی، اور زینت ہے۔ کیا یہ تینوں چیزیں ہیں میاں بیوی کے رشتے میں؟ آج اگر نہیں ہے تو پھر وہ کیسا رشتہ ہے؟ لباس کے بغیر انسان کیسا لگتا ہے بتائیں، کتنا برا لگتا ہے، ننگا آدمی کتنا برا لگتا ہے، لباس اس کا حسن ہے۔ تو جب اس رشتے میں لباس والی بات نہیں رہ جاتی نا، تو یہ بھی بھدا ہو جاتا ہے۔ اس اگر اس سے ستر نہیں ہو رہا، یعنی عیب نہیں ڈھانپے جا رہے، پردہ پوش ہی نہیں یہ کر رہا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مردوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عورت کی باتیں باہر جا کے نہ کریں، اس کے عیب مردوں میں بیٹھ کے بیان نہ کریں، جگہ جگہ جا کے اپنی عورت کو بدنام نہ کریں۔ جدھر بیٹھے ادھر عورتوں کی باتیں، جدھر بیٹھے ادھر بیویوں کی اوپر تان کرنے شروع ہو جانا، ان کی غیبتیں کرنا شروع ہو جانا، ان کی برائیاں کرنا شروع، اور اس کو بہت جینوئن سمجھتے ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نصیحت فرمائی مردوں کو کہ عورتوں کے بارے میں میری نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اور پسلی میں سے بھی سب سے نچلا حصہ جو ٹیڑھا ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو توڑ کے رکھ دے گا اس کو، تو جیسی ہے نا یعنی ویسے ہی رہنے دو اس کو۔ اب اس چیز کا مذاق بنا لیا گیا، یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم اپنی عورتوں کے بارے میں، جو کمزور ہیں تمہارے غلاموں کے بارے، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ دو کمزوروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی، یہ عورتوں اور غلاموں کے بارے میں، یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی یہ تمہارے انڈر ہوتے ہیں نا، آزاد نہیں ہوتے، عورت کہاں جائے گی؟ تو مرد کی یہ بہت زیادہ اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ عورت کے عیب باہر جا کے بیان نہ کرے، وہ اپنے بیڈ روم کی باتیں باہر جا کے نہ کرے۔ وہ عورت نے کوئی بات اس کو کہہ دیا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ اٹھ کے آپ جا کے یہ تو میری امی ہے ان کو بتا دوں، فلانے بھائی کو بتا دوں، اس بہن کو بتا دوں، ان کو جا کے بتانے لگے۔ آدھے مسئلے تب پیدا ہوتے ہیں جب مرد اور عورت اپنی آپس کی باتیں، جب یہ سطر نہیں نا بنتا رشتہ، یہ سطر نہیں بنتا، مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی باہر جا کے، دروازے سے باہر جا کے کسی اور کو بات بتائے، چاہے وہ کتنا ہی سکا رشتہ دار کیوں نہ، وہ ماں ہو، جو وہ دوست ہو، کوئی اور ہو، انلیس خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ہی پرابلم ہو جائے، تو پھر کسی ایسے بندے سے کنسلٹ کرنا چاہیے جو آپ کو ایڈوائس دے سکے، جو آپ کو اس کا مسئلے کا حل بتا سکے، جو آپ کی کوئی ہیلپ کر سکے اس میں۔ یہ نہیں ہے کہ گند اچھالتے جانا، جدھر بیٹھے ہیں ادھر اپنا گاربیج کھول کے اور وہاں پہ پھیلانا شروع کر دینا۔ تو یہ آج یہ بیماری مردوں میں بھی بہت ہے اور عورتوں میں بھی بہت ہے۔ آپ گیدرنگز دیکھ لیں، تھوڑی دیر میں ہی مردوں کی برائیاں ہونی شروع ہو جائیں گی عورتوں کی مجلس میں، اور مردوں کی مجلس میں بیویوں کی برائیاں شروع ہو جائیں گی۔ اور سب سے دکھ کی بات پتا ہے کیا ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ رشتہ اتنا پیارا بنایا، اس کو سکون کی چیز بتایا، جنت تک کے اندر جوڑے بتائے کہ تمہارے جوڑے ہوں گے، اور آج اتنا دکھ ہوتا ہے اس بات کے پر کہ آؤٹ آف ویڈ لاک، جو شادی سے پہلے کے معاملات ہیں، ڈیٹنگ اور چیٹنگ اور افیئرز، اور یہ اتنا اس کو گلیمرائز کر دیا گیا، اور شادی کو ایک مصیبت، اور شادی کا لڈو جو کھائے پچھتائے، اور اس طرح کی باتیں کہہ دی گئیں کہ جیسے بیوی ہے، اور جہاں بیوی کے کارٹون بنائے وہاں پہ اس کے ہاتھ میں ایک بیلنا سا پکڑا دیا، اور جیسے وہ ایک ہٹلر ہے اور وہ ایسے ہے، اور پھر اسی کی وہ اس کے بعد وہ ایسے نہیں، وہ اتنی موٹی ہو جاتی ہے، وہ یہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لطیفے بنا دیے گئے، اور اس کو اس یہ بیشنگ کی گئی اس چیز کی۔ کہ آج آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو شادی کے نام سے ہی گھبراتے ہیں، کہتے ہیں فرینڈ شپس کر لو، شادی نہیں ہم نے کرنی۔ کئی لڑکے لڑکیاں ایسے ہیں، کہتے ہیں شادی کے جھنجٹ میں کون پڑے، اس کو جھنجٹ کا نام کس نے دیا؟ یہ ہماری سوسائٹیز نے دیا نا، جب ہم اتنی برائی کرتے ہیں، جب ہم اتنی ناشکری کرتے ہیں اس رشتے کی۔ حالانکہ اگر عورت دیکھے تو وہ اس اپنے آپ کو سوچے کہ اگر اس کی شادی نہ ہوئی ہوتی تو کہاں بیٹھی ہوتی آج اپنے گھر میں، اپنے بھائیوں کے اوپر، اپنی بھابھیوں کے اوپر، اپنے محتاجی کی ایک اس کے اندر سٹیٹ میں ہوتی۔ اللہ نے اس کو ایک شوہر دیا، ایک گھر دیا، ایک پروٹیکشن دی، اور وہ ناشکری کرتی ہے۔ اسی طرح مرد کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو ایک عورت دی، وہ حلال رشتے سے اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، ورنہ زنا میں پڑ کے، کسی حرام اس کے اندر پڑ کے اپنے ایمان کو کھو دیتا، اب گناہ کبیرہ میں پڑ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت کو محفوظ کر دیا اس کو ایک عورت دے کر، پھر اس کے گھر کو سنوارنے والی ہے، اس کے لیے بچے پیدا کرنے والی ہے، اس کے لیے اس کی رازوں کی حفاظت کرنے والی ہے، اس کی گھر کی نگہداشت کرنے والی ہے، اس کے بچوں کی تربیت کرنے والی ہے، اس کے کھانے پینے، اس کے گھر کو صاف ستھرا رکھنا اور پرسکون رکھنا، اور اس کے جو اس کا گھر ہے وہ عورت کی وجہ سے ہے۔ اگر عورت اس گھر میں مسنگ ہو جائے، آپ بھی شاید جانتے ہو لیکن میں نے خود بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، कि किसी घर में औरत फौत हो गई और आज जो बच्चों की हालत है वो, जो लोग ऐसे किसी मिसाल को जानते होंगे उनको पता होगा कि क्या होती है। ये आदमी फिर यानी कहीं के नहीं रहते, वो कहते हैं बाहर देखें, घर देखें, बच्चों को देखें, क्या क्या करें। अब कोई और औरत लेकर आते हैं तो वो बच्चों की मां नहीं बन पाती उस तरह से। तो ऐसे में आदमी को भी कदर करनी चाहिए, ये औरत मेरे लिए कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। तो दोनों एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक दूसरे की कंप्लीशन है। लेकिन अगर एक दूसरे के लिए वबाल बन जाए, एक दूसरे के लिए एक मुसीबत बन जाए, तो इस रिश्ते से ज्यादा कड़वाहट भी किसी में नहीं होती फिर। तो मैंने आपको बताया सतर बने, हिफाजत बने, हर तरह से हिफाजत, वो भी आदमी भी औरत की जान माल इज्जत की हिफाजत करे, औरत भी उसके घर की भी उसकी इज्जत की हिफाजत करे। इस औरत की इज्जत पे कोई धब्बा लगा तो इस आदमी के ऊपर धब्बा लग जाए, ये सोच के चले। और जीनत भी, तुम एक दूसरे के लिए जीनत हो, आदमी को ये नहीं कहा कि तुम एक छड़े घूमते रहोगे तो ये तुम्हारे लिए जीनत है। आज आदमी इस चीज में फखर महसूस करते हैं कि हम अकेले हैं, हम सिंगल हैं, और शादीशुदा ये तो बस। इसी तरह औरत की जो भी आपने देखा होगा माशरों में, ये जो हमारे कितने ये चीजें बदल गई हैं, क्योंकि औरत को एक कमोडिटी, एक बस शो पीस बना दिया गया ना, तो वो औरत भी तभी तक मर्दों को अच्छी लगती है जब तक कि वो सिंगल होती है। इसलिए क्योंकि उनकी अगर वो शौहर वाली हो गई तो फिर तो उनकी रीत से दूर हो गई, फिर तो वो एक हिसार में आ गई, एक हिफाजत में आ गई। देखें हमने कितने अपने जाविये बदल दिए। जब इस्लाम खूबसूरती किसमें कहता है, इस्लाम कहता है खूबसूरती इसमें है कि तुम्हारा जोड़ा हो और तुम उसके साथ हो। ये नहीं कि आदमी कहीं रह रहा है, औरत कहीं और रह रही है, और आप दूर दूर रह रहे हैं, और अब ये है तो शादीशुदा लेकिन हम साथ नहीं रहते। ये कैसी बात है, ये कौन सी शादी, ये कहां का सुकून मिल रहा। अगर आपने देखना है ना मिसाली शौहर कैसे होते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ले, उनसे ज्यादा बिजी कौन आदमी हो सकता है, कौन उनसे ज्यादा मसरूफ हो सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखें, हज़रत सफिया के साथ आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका था। हालांकि देखें एक दुश्मन की बेटी थी हज़रत उम्मे हबीबा, देख ले उनके साथ क्या रवैया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हर एक जौजा का अलग हुजरा था, उनकी अपनी आजादी थी, उनकी अपनी प्राइवेसी थी। ये नहीं था कि सारी औरतें, चलो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बहुत मालदार तो थे नहीं, या इवन थोड़ा बहुत जो मालदार होते वो भी नहीं थे, कितनी तंगदस्ती का आलम था। हर एक को लेकिन हुजरा अलग दिया गया, किसी की प्राइवेसी में ना दखल हो, हर एक का हक अलग है, उसको उसका हक मिलना चाहिए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आते थे तो घर में उनको पूरा टाइम देते थे, अपने कपड़ों में पैबंद खुद लगा लेते थे, अपनी जूती खुद सी लेते थे, अपने घर की सफाई खुद कर लेते थे, अपने घर के कामों में अपनी बीवियों की मदद फरमाते थे। आज अगर कोई दीन भी पढ़ जाए आदमी, तब भी वो कहता है कि ये तो अब मेरा तो हक और ज्यादा हो गया। वो वहां से हदीसें निकाल निकाल के लेकर आता है, ये देखो ना, ये ऐसी औरत होनी चाहिए, बीवी को ऐसा होना चाहिए। तुमने देखा नहीं, अगर सज्दा जायज होता तो शौहर के लिए होता। इस्लाम तो हमें ये सिखाता है, देखें कि सुकून वाली चीज, सुकून इस तरह से नहीं मिला करते कि हम ह्यूमन राइट और विमेन राइट और ये राइट और फलाना राइट, इस चीज के हम दावे करें और इस चीज को हम मांगे कि मेरे हकूक ये हैं। तुमने देखा नहीं है ये हदीस में क्या है, ये हकूक है शौहर के। इस तरह से हकूक नहीं मिला करते और ना ऐसे सुकून मिला करते। सुकून हक देने से मिलता है, और बड़ा वही होता है जो देने वाला होता है। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। हम मांगने वाले बन जाते, मेरा हक दे, मेरा हक दे, छीन रहे हैं हक, तुम देने वाले क्यों नहीं बन जाते। ऊपर वाला हाथ और नीचे वाले हाथ की बात सिर्फ और सिर्फ हम समझते हैं पैसों के मामले में, सिर्फ पैसों के मामले में नहीं, हकूक के मामले में भी। जहां पे भी आप देने वाले बन जाए, आप ऊपर वाले हो जाते हैं। उसके बाद देखें, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एज हस्बैंड उनका रोल था, अगर उसको देखा जाए तो ये हदीसें एक तरफ रख के अगर उनका रोल देखा जाए कि वो कैसे शौहर थे, तो मेरे ख्याल में उनसे ज्यादा आइडियल शौहर कोई हो नहीं सकता। अलग कहने को कहेंगे हाँ इस्लाम के अंदर तो पता नहीं औरतों के हकूक नहीं है, ये नहीं, कितनी बातें होती हैं। जितने ज्यादा हकूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को दिए उनसे ज्यादा तो बेहतरीन कोई मिसाल ही नहीं मिलती। क्या ऐसा शौहर फिर भाई से सुकून नहीं होगा जो अपने घर में इस तरह से हो, और वो कोई और शौहर हो के घर आए खाना उसके आगे रखा जाए वो खाना पटक के फेंके, ये क्या इसके अंदर तो नमक ज्यादा, इसके अंदर तुम्हें तो खाना ही नहीं बनाना था, ये तो ऐसे है, तो वो कैसे भाई से सुकून बनेगा। सुकून तो तब होगा जब आप सलूक के साथ अच्छे उसने सलूक के साथ रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि कौन सी औरत सबसे अच्छी है, आपने फरमाया जिसको जब तुम देखो तो तुम्हें खुश कर दे, तुम्हें उसे हुक्म दो तो हुक्म पूरा करे, जो कुछ तुम पसंद करते हो इसकी जान माल के हवाले से उसके बारे में कभी तुम्हारी मुखालफत ना करे। यानी जो चीज तुम्हें ना पसंद है कि ये नहीं होना चाहिए, चाहे हाँ अल्लाह ताला की जहां पे शरीयत की मुखालफत की बात आ रही वहां पे नहीं मानना, लेकिन वैसे जो चीज उसको ना पसंद हो, इसका मतलब है कि शुरू में ही जाके जब शादी हो तो इंसान को पूछ लेना चाहिए, औरत को पूछ लेना चाहिए कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। अगर मैं उस तरह से ही चलूं इंस्टेड ऑफ के बाद में लड़ाई झगड़ों के बाद ये बात सीखे, और आदमी को भी अच्छा लगेगा। अगर उस वक्त नहीं पूछा था, अब तो समझ आ ही जाती है ना फिर साल साल रहने के बाद कि क्या पसंद करते हैं क्या नहीं पसंद करते, कौन सी बात अच्छी लगेगी कौन सी बुरी लगेगी, किस बात पे गुस्सा आ जाएगा, क्या जरूरी है कि फिर हम वही करें। तो एक दूसरे का लिबास बन के रहें, इस रिश्ते में खूबसूरती पैदा करें। अगर आप इस रिश्ते में खूबसूरती ले आते हैं, सिर्फ जाहिरी खूबसूरती नहीं, जाहिरी में हम टिप टॉप बन के बैठे रहे बस मैंने बहुत कुछ अपना जेवर और कपड़े पहन लिए तो बस ये रिश्ता खूबसूरत हो गया, सिर्फ ये नहीं है, बात नहीं खूबसूरती। अगर औरतें ये समझ जाएं कि अपनी जुबान को काबू कर लें, अपने अखलाक को अच्छा कर लें, अपने माथे की तेवरी को दूर कर लें, अपनी जुबान की कड़वाहट को दूर कर लें, अपनी टोन अच्छी कर लें, तो आप देखिएगा आपके शौहर बाहर से ज्यादा घर में रहना पसंद करेंगे, भाग भाग के घर आएंगे, घर को भी साफ सुथरा रखें, अपने आप को भी साफ सुथरा रखें। जो शरीफ आदमी होगा वो फिर जिसको हलाल लज्जत घर में मिल रही हो वो क्यों बाहर घूमना चाहेगा, वो सारा दिन अपनी नजरें बचा बचा के घर पहुंचता है। और अगर यहां पे हम दीन के नाम पे हम एक आपा जी बन के बैठी हुई है, दुपट्टा कसा हुआ, बाहर जाना तो हमने पूरा तैयार होना, फुल तैयारी है, और घर में बैठी मैं तो पुराना सा सूट पहन के बैठ गई, या मेरा तो टेस्ट है या मेरे तो सर में दर्द है, अब मुझसे ना बात करना, मैंने तो बहुत पढ़ना है, खाना भी खुद निकाल ले जाके, तब मुझे बताएं कि दीन के ऊपर बातें ही होंगी ना, तब वो रोकेंगे ही ना कि ऐसी क्लासों को छोड़ो, क्या सीखा तुमने। तो इसलिए हिकमत, हिकमत इस रिश्ते में भी, हिकमत इस रिश्ते में रोमांस लेकर आए। रोमांस ये नहीं है जो शादियों से पहले होते हैं, और ये नहीं है रोमांस, इस रिश्ते को रोमांटिक बनाए, इस रिश्ते के अंदर एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखे, एक दूसरे की तारीफ करना सीखे। खास तौर पे जो दीन सीखना चाहती हैं खवातीन या दीन की खिदमत करना चाहती हैं, उनको तो अपने शौहरों को बड़ा ही खुश रखने की जरूरत है, तभी वो आपका साथ देंगे ना, कोऑपरेट करेंगे, वरना वो चिढ़ेंगे इससे। तो औरतों के लिए भी है, आदमियों के लिए भी, अल्लाह ताला ने फरमाया वा आशिरूहुन्ना बिलमारूफ, इनको अच्छी तरह से रखो। अगर तुम्हें इनकी कोई एक बात नापसंद भी हो सकता कोई दूसरी बात हो, अल्लाह ताला उसमें खैर डाल दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन आदमी वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, तो पता चल जाएगा बेस्ट आदमी कौन सा। बेस्ट आदमी वो नहीं है जो अपने आप को आज के फैशन के मुताबिक सजा संवार के बाहर घूमता हो या बॉडी बिल्डर हो, वो नहीं है बेस्ट आदमी, यहाँ बस बैठ के तफसीरें बहुत पढ़ता हो या दाढ़ी उसने रख ली या सर पे टोपी लगा ली, ये बेस्ट हो गया, बेहतरीन हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन हुआ जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो, کتنے آدمی ہیں جو گھر والوں کے لیے اچھے ہیں. مطلب ایک تو ناشکری ہوتی ہے, ویسے ہی لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے ناشکری کرنے کی اور بات کرتے رہتے ہیں, لیکن ناشکری کے علاوہ اگر ناشکری نہ ہو, اور ویسے کتنی عورتیں ایسی ہوں گی جن سے اگر پوچھا جائے کہ آپ اپنے شوہروں سے خوش ہیں یا نہیں, تو وہ کہیں ہاں ہم خوش ہیں ان سے, ہمارے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں. کتنی عورتیں ہوں گی, اسی سے آدمی کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے. تو اس میں ایفرٹ لگتی ہے, اس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ قربان کرنے کا ہونا چاہیے جذبہ, تب جا کے کہیں گھر بنتے ہیں اور سنورتے ہیں اور سکون وہاں پہ ہوتا ہے. اگر ہمارا گھر ایک پرسکون گھر نہیں ہے تو بگ پرابلم ہے, کیونکہ یہاں پہ ہمیں یہ آیت بتاتی ہے کہ گھر کی زندگی, میاں بیوی کا تعلق سکون کی چیز ہونا چاہیے, کہ آدمی گھر آئے تو اس کو ایسے لگے کہ ساری دنیا کے مسئلے مسائل باہر رہ گئے اور میں ایک پرسکون سی ایک جگہ میں آ گیا ہوں, ایک انوائرمنٹ میں آ گیا ہوں, اور وہ اس سکون کے لیے وہ بھاگا بھاگا گھر آئے. میں بس گھر پہنچ جاؤں تو میری سکون کی جگہ میں, اپنی سکون کی انوائرمنٹ میں آ جاؤں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اس نے ڈال دی تمہارے درمیان مودت اور رحمت. اس رشتے کے درمیان اللہ تعالی نے ڈال دی ہے مودت, یعنی جوانی کے اندر جو جذبات ہوتے ہیں انسان کی, جو اٹریکشن ہوتی ہے اپوزٹ سیکس سے, وہ مودت ہے یہاں پہ. اور رحمت کیا ہے, جب انسان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور وہ جوانی والے وہ شہوت والے جذبات اب ماند پڑ جاتے ہیں, اب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, اب وہ بات نہیں رہتی, اس وقت بھی ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا سلسلہ رکھنا بغیر کسی غرض کے, اب کوئی غرض نہیں ہے نا, جو پہلی والی تھی جو جوانی میں تھی وہ والی اب غرض ختم ہو گئی ہے, تو اب ایک دوسرے کے ساتھ رحمت. اور آپ دیکھیں گے بعض جوڑوں کو کہ جب بڑھاپے میں بھی پہنچ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی کیئر, ایک دوسرے کو دوائیاں دے رہے ہیں, ایک دوسرے کو ساتھ بیٹھے ہوئے اور باتیں کر رہے ہیں, جب ان کے پاس بیٹھنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ ایک دوسرے کا جی بہلا رہے ہیں. اس وقت کیا, اس وقت تو کوئی فزیکل اٹریکشن تو نہیں ہوتی اور ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا لگتا ہے. اس وقت بھی بعض آدمی اتنے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, ان کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی اس رشتے میں, لیکن دو اجنبی ہوتے ہیں, کیسے اللہ تعالیٰ ان کو ایک کر دیتا ہے. کتنا خاندانوں کا ڈفرینس ہوتا ہے, کتنے کوئی کہیں کس بیک گراؤنڈ سے کوئی کسی سے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جوڑ دیتا ہے کیسے, اور وہ پوری زندگی ایک چھت تلے گزار دیتے ہیں. تو یہ اس رشتے کی خوبصورتی ہے, یہ رشتہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا یہ رشتہ بنایا, کیسے تمہیں یہ رشتہ دے دیا, تمہارے اس چیز کی بھی, تمہاری سیٹسفیکشن کی, صرف سیکشوال سیٹسفیکشن نہیں بلکہ یہ کہ انسان کو ایک کمپنی چاہیے, انسان کو اپنے جذبات اپنے احساسات شیئر کرنے کے لیے کوئی چاہیے, شیئرنگ جس کے ساتھ ہوتی ہے, اور جو کیئرنگ رشتہ ہو وہ رشتہ تمہیں عطا فرما دیا, جو بہت کلوز ہے, اس سے زیادہ کلوز نہیں کوئی اور رشتہ ہو سکتا, وہ تمہیں عطا فرما دیا. کیا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے؟ کیا یہ جو محبت ایک دوسرے کے لیے, اٹریکشن ایک دوسرے کے لیے جوانی میں ہوتی ہے, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نہیں ہے؟ ورنہ کس عورت کا جی چاہے کہ وہ ایک آدمی کے لیے بچے پیدا کرے, اور کس آدمی کا جی چاہے کہ وہ اب عورت اور اپنے بچوں کے لیے مارا مارا پھرتا رہے, محنت کرے مشقت کرے سارا دن. یہ وہ اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ اس کو رکھنا چاہتا ہے گھر میں, اور یہ عورت کی طرف سے بھی اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ اس کے بچے کو پیٹ میں رکھ کے اور اس کو پیدا کرتی ہے اور پالتی ہے. اور دیکھیں دوسری ایک اور بات یہاں پہ رہ گئی, جب عورتیں زیادہ تر اپنے بیٹوں کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہیں تو نمبر 1 پہ رکھتی ہیں کہ خوبصورت بہت ہو, حالانکہ खूबसूरती से सुकून नहीं मिल सकता। चेहरे को आप थोड़े दिन देख के खुश तो हो सकते हैं, लेकिन सुकून देने वाली चीज चेहरा नहीं होती सिर्फ, सुकून देने वाली चीज उस औरत का इनर सेल्फ होता है। कितनी औरतें अपने बेटों के लिए ऐसी बीवियां तलाश करती हैं जो किरदार वाली, अखलाक वाली और यानी एक पुरसकून पर्सनैलिटी वाली हो। इस चीज की तो परवाह भी नहीं की जाती कि अखलाक क्या है, यही देखा जाता है जाहिर क्या है। तो अल्लाह ताला ने ये यंग टू ओल्ड जो टाइम में किस तरह से इंसान की एक से पहले अट्रैक्शन और उसके बाद रहमत बन जाना, ये इस सिलसिले का दिखाया। जबकि आप देखें औरत इतनी बूढ़ी हो चुकी है, उसका उसके अंदर अब वो वैसी अट्रैक्शन तो नहीं रही है फिजिकल, फिर भी आदमी उसको छोड़ता नहीं है कि आप ये छोड़ के फिर आगे चले जाए। अल्लाह इसके कोई ऐसे ही हों जो कि बस इसमें ही पड़े रहते हों बेहुदा चीज़ों में, फहाशी और इनमें, वो अलग। लेकिन कोई शरीफ आदमी ऐसा नहीं होता। ये मोहब्बत अल्लाह ने डाली होती है। फी ज़ालिका लआयात लिक़ौमिन यतफक्करून, इसमें अलबत्ता निशानियां, यकीनन निशानियां उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करें। गौर इसमें गौर करते रहे, बात तो एक है कि अल्लाह ने जोड़ा बनाया और उसके अंदर, लेकिन निशानी एक नहीं है इसमें, निशानियां हैं। क्योंकि जितना तुम गौर करते जाओगे बहुत सारी बातें तुम्हारे सामने आएंगी, उतना ही शुक्र निकलेगा उस जात का कि देख उस अल्लाह ने हमारे लिए जोड़ा बनाया। शायद कुछ लोग कह रहे होंगे कहाँ ये कोई सुकून है, ये तो मुसीबत है, ये तो ऐसे है, इसलिए कि वो बाज़ दफ़ा सिर्फ चंद ज़ाहिरी चीज़ों को देखकर और उसके ऊपर फैसला करने लगते हैं। अगर इंसान गौर करे ना और ये सोचे, देखिए नेमत की कदर तब आती है जब इंसान ये सोचे कि अगर ये नेमत ना होती तो क्या था। देखे ना, मसलन हम कभी पानी की नेमत का शुक्र नहीं अदा करते, ना एहसास करते। हाँ, लेकिन पानी किसी दिन बंद हो जाए ना, फिर बहुत शुक्र करते हैं, हाई ये कितनी बड़ी नेमत है। बिजली रोज आती रहती है, हम नहीं शुक्र अदा करते। एक दिन बिजली चली जाए और दिन रात ना आए, फिर देखना हम सबसे ज्यादा इसी नेमत का शुक्र अदा करेंगे। इसी तरह ये जो नेमत है ना, इस चीज का शुक्र इससे पहले कि अल्लाह ताला किसी से ये नेमत छीन ले, इससे पहले शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान चूंकि थुड़दिला भी है और ना शुक्रा भी है, वो अक्सर जब तक नेमत उसके पास होती है उनका एहसास नहीं करता। लेकिन अगर नेमत एक दफा छिन जाए ना, बहुत ही कम ऐसा होता है कि दोबारा मिल जाए। तो ये सोचें अगर ये नेमत ना होती तो क्या होता, ये सोच के देखें, उसके बाद शायद ही एहसास दिल में आए, उसकी कदरदानी आए। और कभी भी देखें, यहाँ पे इसको मोहब्बत और रहमत कहा गया, कभी भी मोहब्बत के इजहार में कभी बुखल ना करें। क्या जाता है कि इंसान चार मोहब्बत के बोल बोल दे, आप लोगों को तो टेक्स्ट करते रहते हैं, तो उनको कभी हार्ट भेज रहे हैं, कभी कुछ भेज रहे हैं, कभी उधर दिल उड़ा जा रहा है तो कभी इधर से जा रहा है, तो कभी आंखों में दिल लगे में इस तरह से करके भेजते हैं। क्या कभी शौहर को भी भेजते हैं ऐसे कि उनको भी कभी दिन में ऐसा मैसेज कोई भेज दे? मेरे ख्याल में वो तो उछल के अपनी कुर्सी से ही गिर जाएंगे कि आज हो क्या गया। तो फिर आज बताइएगा कि मैंने कुरान में ये आयत पढ़ी है तो मैं बस अब से ऐसी बीवी बन गई। अब देखिएगा वो कितने अप्रिशिएट करेंगे आपके पढ़ने को भी। हमने वो कभी कभी दीन के नाम पे हम इतने अजीब से रिजिड हो जाते हैं ना, दीन को फिर अपने मफाद में इस्तेमाल करते हैं, दीन में से भी चुनते हैं वो चीजें जो हमें पसंद है ना, बस ये तो उनके सामने भी रखूं। आपको भी मैं बताऊं आज मैंने क्या सुनी है बातें कि शौहर को कैसा होना चाहिए था और आप तो ऐसे ऐसे हैं। कभी शिकायतें करने से, शिकवे करने से, गिले करने से ताल्लुकात अच्छे नहीं होते। देखें आप खुद सोचें, आप अपनी दोस्त के पास जाएं और गिलों शिकवों की एक लिस्ट खोल के बैठ जाएं, तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो, क्या आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे उसके बाद? नहीं नहीं, मैंने तो बताना था ना तुम्हें, मैं तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं भाई, मैं तो मुंह पे कहती हूँ, और मुंह पे कहने के बाद रहा सारा ताल्लुक भी गया। तो ये नहीं आप कर सकते। अगर आपको कोई शिकायत भी हो तो ठंडे मिजाज के साथ, अच्छे तरीके के साथ, हिकमत के साथ बातों बातों में अपनी बात भी बता दें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि कोई गिला शिकवा कर रहे हैं। बस एहसास ही दिलाना होता है ना दूसरे को। तो इस चीज के अंदर बड़ी हिकमत चाहिए। अगर हम हिकमत से लेकर चलेंगे तो देखिए यही रिश्ता, इतनी मैं कहती हूँ ये दुनिया के जो घर है ना यही आपकी जन्नत बन जाएंगे। और अगर इन्हीं में अपनी बेवकूफियों की वजह से कोई ऐसे काम कर बैठेंगे तो फिर यही जिंदगी जहन्नम भी बन जाती है। एक दूसरे का चेहरा देखने का जी नहीं चाहता। तो वो घर ऐसे नहीं है जो जहां पे ये आयत जो जिस रिश्ते को ये डिपेक्ट कर रही है आयत, वो रिश्ते इस आयत के मुताबिक जो मियां बीवी का असल मकसद है वो पूरा हो ही नहीं रहा। उस रिश्ते को कहेंगे ही नहीं कि ये कोई ऐसा रिश्ता है जो सुकून वाला है या जिसके अंदर मोहब्बत और मुहब्बत है। मकसद ही पूरा नहीं हो रहा, बस लगे बंदे के एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, बस दैट्स इट। ये बड़ी बदनसीबी होती है। इसमें आपके सामने मैं रखूंगी उम्मे हकीम, एक अरब अदीबा थी। उसने अपनी बेटी को जो नसीहतें की थी, बहुत ही जबरदस्त नसीहतें हैं जो हमारे लिए भी काम आने वाली है, आगे भी हम बताएं। उसने कहा था, पहली नसीहत जो की थी, 10 नसीहतें की थी उसने, तो उसने कहा कि ऐ मेरी बेटी, मेरी आंखों की ठंडक, शोहर के घर जाके कनात वाली जिंदगी गुजारने का एहतमाम करना। जो दाल रोटी मिले उस पर राजी रहना। जो रूखी सूखी शोहर की खुशी के साथ मिल जाए वो उस मुर्ग पुलाव से बेहतर है जो तुम्हारे इसरार करने पर उसने नाराजगी से दियो। चलो जी मुझे बाहर ले जाके खाना खिलाएं, मुझे ये करें, मुझे अब ये चाहिए, मुझे ये दिलाएं, मुझे आज ये शॉपिंग करनी है, मुझे आज फलानी जगह से ये चीज पसंद आ गई है, मुझे तो लेनी ही लेनी है। अब वो चाहे गुस्से से करे, चाहे उठाके पटके नोटों को और आपके आगे फेंक दे और जाओ जाके ले लो और गुस्से में कह दे, उससे बेहतर है कि आप कनात करते और उसी की खुशी के साथ अगर कोई कम भी मिल रहा है तो उस पर राजी रहते। दूसरी नसीहत, मेरी प्यारी बेटी, इस बात का ख्याल रखना, अपने शौहर की बात को हमेशा तवज्जो से सुनना, उसको अहमियत देना, इम्पोर्टेंस तवज्जो से सुनना। ये नहीं है कि वो कुछ बोल रहे हैं, हम अपनी टेक्सटिंग में लगे हुए, हमने फोन पे बातें कर रहे हैं, वो बैठे हुए ऑफिस से आके हमारी बातें ही खत्म नहीं हो रही। हम वो घर आए हैं, हम सहेलियों के घर गए हैं, या वो घर आए हैं और हम अपनी सहेलियों को लेकर बैठे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जब वो घर आ जाए अब आपकी पूरी तवज्जो उनके ऊपर होनी चाहिए। छोड़ दें उस वक्त अपनी टेक्स्ट को, अपने फोनों को, अपनी सब चीज को, और ना ही दूसरों के घर उस वक्त फोन करें जब उनके शौहर घर हो। अहमियत दें उनको, उनकी प्रेजेंस को अहमियत दें, हर हाल में उनकी बात पर अमल करने की कोशिश करना। इस तरह से तुम इनके दिल में जगह बना लोगी। देखिए ये नुस्खे हैं दिल में जगह बनाने की। जिंदगी तो गुजर ही जानी है, जिंदगी तो ऐसे भी जैसे तैसे गुजर ही सकती। अगर आप चाहते ना आपकी जिंदगी जन्नत बन जाए, पुरसकून हो जाए, तो उसके लिए आपको ये एफर्ट करनी पड़ेगी। अब कहने को आप कहें मैं क्यों करूं ये, लेकिन अगर आपने जगह दिल में बनानी तो करना पड़ेगा। क्योंकि आगे वो क्या कहती हैं, क्योंकि असल आदमी नहीं, आदमी का काम प्यारा होता है। ठीक है, तो ये चीज है कि जो इंसान करता है वो चीज होती है। तो अब बाज दफा ऐसा होता है कि हस्बैंड ऑफिस से आते हैं तो उनको ये दिल होता है कि मैं कोई बात करूं, मैं कोई अपनी चीज शेयर करूं, कोई ऑफिस की करूं, कोई यानी मेरे साथ बैठे, ये मेरी बीवी मेरे साथ खाना खाए। उस वक्त आप अपने अपने कामों में लगे हैं। अब आप कह रहे हैं मैं तो सुबह से बड़ी बिजी हूं, अभी मुझे बर्तन धोने, अभी मुझे ये करना है, अभी मेरे पास तो काम ही इतने, और उनके साथ बैठना ही आपको अच्छा ना लगे तो उनको आदत पड़ जाएगी उस अकेले ही खाना खाने की, अकेले ही आके बैठने की। जब वो घर आ जाए तो वो VIP होने चाहिए कि आप उनके गिर्द घूमें। उस वक्त बच्चों को भी ना लेके बैठ जाए, पढ़ाने उनको बैठी हुई, उधर थप्पड़ पड़ा है, उधर वो पड़ा, घर एक उधम मचा हुआ है। अब वो बेचारा एक थकारा घर आया, वो देख रहा है घर का क्या हाल हुआ है, अब पढ़ाइयां हो रही हैं, ये भी ना करें। आए तो एक जैसी सुकून उसको हासिल हो जाए। बताएगा कौन नहीं आना चाहेगा? फिर हम कहते हैं ये बाहर टाइम ज्यादा गुजारते हैं तो घर भी तो दोस्तों को पसंद करते हैं, घर नहीं आना चाहते, इसका मतलब कुछ ना कुछ मसला है ना घर में। औरत अगर थोड़ा सा खुले दिल से काम ले ना, आदमी का दिल बहुत आसानी से जीत सकती। अगर वो खिदमत करती है ना, तो आदमी का दिल ऐसी औरत से लगना शुरू हो जाता है, फिर वो उसको अपना हमदर्द समझता है, उससे अपनी बात कहना चाहता है। आपको अपना ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। ऐ मेरी प्यारी बेटी, अपनी जीनत और जमाल का ऐसा ख्याल रखना कि जब वो तुझे निगाह भर कर देखे तो अपनी चॉइस पे खुश हो, अपने इंतखाब पे खुश हो कि ये वाकई फिर मेरी बीवी मतलब अच्छी चॉइस थी। सादगी के साथ जितनी भी मुकद्दर हो जाए खुशबू का एहतमाम जरूर करना, खुशबू जरूर लगाया करें घर के अंदर रहते हुए। अगर आपके घर में कोई गैर महरम नहीं है तो खुशबू लगाएं। बाज लोग आते हैं वो, अब उन्होंने इतर की भर भर के शीशियां रखी होती, अब वो आदमी जो है बाहर जाके औरतों के तो दूसरी खुशबुएं सूंघते हैं और आपके घर में इतर के सिवा कुछ है नहीं। ये किसने आपको बता दिया कि इतर इस्लामी चीज है, दूसरा जो है ना उसके अंदर अल्कोहल है? पीनी थोड़ी आपने। आप लगाएं परफ्यूम जो भी लगाने हैं जरूर जी भर के लगाएं, लेकिन घर में ही रहें फिर लगा के, ये नहीं हो कि बाहर निकल लें। तो ऐसा ना करें कि घर के अंदर तो स्मेल आए और बाहर जा रहे हैं तो खुशबू लगाई भी। सादगी साथ जितनी वो मुकद्दर हो जाए खुशबू का एहतमाम करो। याद रखना तेरे जिस्म और लिबास की कोई बू और कोई बुरी हैयत उसे नफरत और कराहत ना दिलाए। कोई ऐसी चीज आपकी बॉडी पे ना हो, चाहे वो बू हो, चाहे वो इजाफी बाल हैं, चाहे वो मैल है, चाहे वो कोई ऐसी चीज है जिससे कराहत आती हो, चाहे दांत नहीं आपने ब्रश किए हुए तो उसकी स्मेल है, कोई ऐसी चीज ना हो जिससे उसको कराहत आए, चाहे पसीने की बदबू है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब ये चीज हम बाहर के लिए तो बहुत एहतमाम करते हैं, घर के लिए इस चीज को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। तो फ्रेश उसको मिले, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। और बेशक जैसा आपके हस्बैंड को पसंद है वैसा तराश खराश का लिबास भी पहने, फिटिंग वाला लिबास भी पहने, अपने घर में पहने, कोई हर्ज नहीं है इसमें। तब भी अगर आपने बस ऐसे ही लिबास पहने हैं कि जो बिल्कुल ही आज की उसके मुताबिक नहीं है, याद रखिएगा एक बात, आज का दौर ऐसा है कि आदमी को स्क्रीन पे भी बेहतरीन से बेहतरीन कोई चेहरे और सजी हुई औरतें नजर आती हैं और बाहर भी बहुत नजर आती हैं। और अगर आप एक बिल्कुल ऐसी बन के बैठ जाएंगी कि मैं तो बहुत सादा रहना पसंद करती हूँ और मैं तो ऐसे, उसमें आपका बनना संवरना भी आपकी एक इबादत है। याद रखें ये आपके हस्बैंड के दीन की हिफाजत है। आप खरीदें भी तो इसलिए खरीदें कि मैं अच्छे पहनूंगी, ताकि मैं अपने हस्बैंड का दिल लुभाऊं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बाहर मिलती है, अगर आप नहीं बने समरेंगे तो वो कहीं और देखेंगे। उनकी नजरों की हिफाजत के लिए करें और ये तमाम करें। ऐ मेरी प्यारी बेटी, अपने शोहर की नजर में भली लगने के लिए अपनी आंखों को सुरमे और काजल से हुसन देना, क्योंकि पुरकशिश आंखें पूरे वजूद को देखने वाले की नजर में जचा देती। गुस्ल और वजू का एहतमाम करना यह सबसे अच्छी खुशबू और नजाफत का बेहतरीन जरिया है। अब देखो उस जमाने में तो काजल और सुरमा था, आज आपके पास मेकअप है और बहुत सारी चीजें, लें अपने लिए मेकअप, अपने आप को सजाएं इससे। लेकिन आप ऐसा ना करिएगा कि बस मेकअप ही करके बैठे रहें, घर का काम सारा बेशक पड़ा रहे, उनके आने से पहले बने समरे। ऐ मेरी प्यारी बेटी, इनका खाना वक्त से पहले ही तमाम से तैयार रखना, क्योंकि देर तक बर्दाश्त की जाने वाली भूख भड़कते हुए शोले की मानिंद हो जाती। आपको पता है पुराने लोग कहा करते थे कि मर्द के पेट, दिल का रास्ता उसके पेट के जरिए, यानी आपने अगर उसका दिल जीतना है ना तो उसको अच्छे अच्छे खाने खिलाओ। इनके आराम करने और नींद पूरी करने के औकात में सुकून का माहौल बनाना, क्योंकि नींद अधूरी रह जाए तो तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। ऐसा ना हो कि शोर सोया हो और घर के अंदर एक शोर शराबा हो। उनकी नींद का ख्याल रखना। देखिए जो मैंने आपको बताया ना, कनात वाली औरत पहले शुरू में बताया, वो है कि देखिए जो उसके पास है اس کے مطابق کرنے والی، آدمی کی خوشی کی خاطر رہنے والی، ایسا بھی نہ اس کے اوپر بوجھ ڈالے کہ وہ بس آپ کا مقصد ہی زندگی کا ایک ہی بن گیا کہ اب میں بس یہی بنی سمری رہوں اور بس میں ہر وقت یا چاہے اور کوئی کام ہو یا نہ ہو میں ہر چیز میں اعتدال، ہر چیز میں، اب کھانا بھی بنا ہونا چاہیے، گھر بھی صاف ہونا چاہیے، اس کی نیند کا بھی خیال ہونا چاہیے، اس کے آنے سے پہلے بھی آپ اپنے آپ کو اچھی طرح صاف ستھرا ذرا ٹھیک ٹھاک کر لیں، اپنے آپ کو سنوار لیں۔ اے میری پیاری بیٹی، ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی کرنا، ان کی اجازت کے بغیر کوئی گھر نہ آئے، ان کا مال نمائش اور فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت اس نے انتظام سے ہوتی ہے اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت اس نے تدبیر سے ہے، یعنی پلاننگ کے ساتھ چلنا، اور یہ نہ ہو کہ مال کی نمائش شو آف میں یا بس اس میں فیشن میں، یا میں جہاں پہ اتنے کم میک اپ لگا سکتی تھی اب تو پتہ چل گیا میک اپ بھی لگا سکتے ہیں، تو آج تو نکل گئے تو اب سارا پیسہ اس کے اندر اڑا کے آ گئے۔ مال کی نگرانی بھی کرنی، اور آپ کے گھر میں کوئی ان کی اجازت، جن کو وہ پسند نہیں کرتے ان کو مت گھر میں آنے دیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو پسند ہو نہ ہو، مجھے تو پسند ہے نا، نہیں۔ اور اعتدال میں رہیں، خرچ کرنے میں بھی اعتدال، یہ جو پلاننگ ہوتی ہے گھر چلانے کی، یہ بھی عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بجٹنگ کرے۔ میری پیاری بیٹی، ان کی رازدار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور اگر تم اس کا راز اوروں سے چھپا کر نہ رکھ سکی تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا، تم بھی اس دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گے، یعنی پھر دیکھنا کہ کیا ہوگا، وہ بھی یہی کرے گا، تمہارے راز اچھالے گا، تم اس کے راز سنبھال کے رکھنا، تب وہ ٹرسٹ کرے گا۔ اور اگر اس کو کہیں سے پتا چل گیا کہ اس نے میری بات یہاں پہ کی ہوئی ہے، کسی دوست سے پتا چل گیا، اس کی بیوی کے پاس کی ہوئی تھی، کہیں اور سے پتا چل گیا، تو کیا اس کا اعتماد رہے گا؟ پھر میری پیاری بیٹی، جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی اب وہ تو ٹینشن میں آئے ہیں، آج جاب چلی گئی یا آج باس نے ان کے ساتھ کچھ ایسی بات کہہ دی، وہ اتنی زیادہ ایک پریشانی میں آئے، تو آپ خوشی سے نہال ہوتی پھر رہے ہیں کہ آج تو ہمارے میرے میکے میں یہ ہو گیا اور وہ خوشی کی بات ہو گئی، نہیں، ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا، شوہر کی کسی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا کہ آج وہ بہت خوش ہیں تو آپ ایک ڈپریشن لے کر بیٹھ گئے، اور نہ شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا۔ ابھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے نا، شکایتیں کرنے سے نہیں بات بنتی، ان کی خوشی میں خوش رہنا اور ان کی خوشیوں کو قہر میں یعنی غصے میں بدلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم کے ان کے دل کو غمزدہ کرنے والی بن جاؤ گی۔ نویں نصیحت یہ ہے کہ اے میری پیاری بیٹی، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل عزت بننا چاہتی ہو تو ان کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا، یعنی جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ نہیں کہ جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں نا، اس طرح سے شوہر کو ٹریٹ کرنا شروع کریں، بات بات پہ ان پہ اعتراض، آپ نے یہ کیوں کیا، آپ ایسے کیوں ہیں، آپ اٹھے کیوں تو آپ بیٹھے کیوں، آپ چلے تو ایسے چلے کیوں، آپ گھومے تو ایسے گھومے کیوں، آپ نے ایسا کیوں کیا اور ویسا کیوں کیا۔ ہم اپنی گفتگو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نا ایک دن آپ ریکارڈ کریے گا، پھر دیکھیے گا کہ کیا میں کہتی ہوں، پھر بعد میں سننا اس کو، میرا کیا رویہ ہوتا ہے، میں کیا باتیں کرتی ہوں، میری ٹون کیسی ہوتی ہے، میری تمیز کیسی ہے، کیا میں ان کو عزت دیتی ہوں، اور آپ ان کو عزت ہی نہیں دے رہے، اور باقی چیزیں تو چھوڑیں، اگر نہیں وہ مسکین بیچارہ کوئی کچھ کہتا تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ میں کر کیا رہی ہوں، وہ تو نہیں کچھ کہے گا، ہو سکتا ہے وہ مجبور ہو سکتا ہے اپنے بچوں کی وجہ سے مجبور ہو سکتا ہے، ویسے ہی آپ سے ڈرتا ہو کہ اس فساد کھڑا کر دے گی اگر اس کو کچھ کہہ دیا تو، کیا اللہ کے آگے جواب نہیں دینا۔ اور ان کی مرضی کے مطابق چلنا، تو اس کو بھی ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی زندگی کا بہترین رفیق پاؤ گی۔ یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرائض کے بعد سب سے افضل کام مسلمان کے لیے خوشی فراہم کرنا، سب سے افضل کام، فرض آپ ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد کسی مسلمان کا دل خوش کر دیں، دل خوش کر دیں کسی کا، تو اور وہ اگر شوہر ہو، وہ بھی ہو سکتا ہے، रोजाना दिल खुश करके भी आप देखें कितनी बड़ी नेकी कमा सकती हैं। इसको हम नेकी समझते हैं? और दसवीं नसीहत है मेरी प्यारी बेटी, इन बातों को पल्लू में बांध लो कि जब तक उनकी खुशी और मर्जी की खातिर कई बार अपना दिल नहीं मारोगी इनकी बात को ऊपर रखने के लिए, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना पसंद हो, जिंदगी के कई मरहलों में अपने दिल में उठने वाली ख्वाहिशात को दफन नहीं करोगी, उस वक्त तक तुम्हारे दामन में खुशियों के फूल नहीं खिलेंगे। कई दफा आपको अपनी मर्जी छोड़नी पड़ेगी, अपनी बात छोड़नी पड़ेगी, अपनी ख्वाहिश को मारना पड़ेगा। और फिर कहती हैं कि ऐ मेरी प्यारी और लाडली बेटी, इन नसीहतों के साथ मैं तुम्हें रुखसत करती हूँ। अल्लाह ताला जिंदगी के तमाम मरहलों में तुम्हारे लिए खैर मुकद्दर फरमाए और हर बुराई से बचाए। ये देखें कितनी प्यारी नसीहत है एक माँ की अपनी बेटी को। ऐसी नसीहत करनी चाहिए ना कि ये नसीहत के तुमने जाते ही बेटा नीचे नहीं लग जाना उसके, अगर वो ये कहे ना तो आगे से ये कहना, और तुम भी किसी से कम नहीं हो, और इतनी ज्यादा भी जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है। जो शुरू से नीचे लग जाती है वो फिर हमेशा नीचे ही लगी रहती है, इसलिए तुम बस अपने उसमें रहना। ये आज की नसीहत है। इसीलिए आज देख लें आपके कितने घर बसते हैं और कितने बिगड़ रहे हैं। और इसमें भी वही बात है कि दरगुजर करना वो बहुत जरूरी है। जो बातें पिछली हो चुकी हैं अब बार बार उन्हीं को लेकर आते जाना और उन्हीं को डिस्कस करते जाना, इससे जिंदगी बहुत कड़वी हो जाती है। फॉरगेट एंड फॉरगिव और आगे चलें। तो आज ये आयात पढ़ ली हैं, अब इसके बाद से नए तरीके के साथ जिंदगी गुजारनी, क्योंकि कुरान से हमने सीखना है ना, ये चीजें भी कुरान हमें सिखाता है कि क्या हमने बनना है, इस रिश्ते को भी कैसे निभाना है। और आज तक नहीं पता था, अब पता चल गया। सुकून की गोली बन जाना।